गाजा 125 साल की उन्मूलनवादी एजेंडा का चरम। गाजा में नरसंहार 7 अक्टूबर 2023 को शुरू नहीं हुआ, नहीं यह किसी एक हिंसक कृत्य की प्रतिक्रिया है। यह 125 साल के एक राजनीतिक परियोजना का चरम है जिसे स्पष्ट रूप से उन्मूलनवादी लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करना, इसके स्वदेशी लोगों को मिटाना और उनकी जगह बसने वाली आबादी को स्थापित करना। यूरोप में नस्लवादियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रिकॉन्क्वेस्ट, पुनर्विजय की बयानबाजी के विपरीत, जो कम से कम पैतृक संबंधों का दावा करते हैं, यह कोई पुनर्विजय नहीं है। यह बाहरी लोगों द्वारा की गई विजय है जो उन लोगों के अस्तित्व को ही नकारने पर आधारित है जिन्हें वे विस्थापित करना चाहते हैं। 1897 में पहले साइनवादी कांग्रेस से लेकर पीढ़ियों तक इजरायली नेताओं के बयानों तक गोल्डा मेयर ने दावा किया कि कोई फलस्तीनी लोग जैसी कोई चीज नहीं है। यूसेफ फिच ने जोर देकर कहा कि एकमात्र समाधान अरबों के बिना फलस्तीन है। रफाइल इटान ने फलस्तीनियों को बोतल में कॉकरोच कहा। वैचारिक मूल कभी नहीं बदला, लक्ष्य हमेशा इरेट्स इसराइल हशलेमा रहा है। पूर्ण इजराइल की भूमि, नदी से समुद्र तक, इसके मूल निवासियों से मुक्त। मैदान पर असमानता, केवल नाम की एक जंग। इजराइल गाजा में अपनी कार्रवाइयों को युद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यह एक विकृति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध दो अपेक्षाकृत तुल्य सैन्य बलों के बीच संघर्ष को मानता है। गाजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह युद्ध नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा समर्थित, द्वारा घिरी हुई नागरिक आबादी पर एकतरफा हमला है। 3 मार्च 2025 से इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू की है। कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई ईंधन नहीं। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण आईपीसी ने चरण 5 की भुखमरी घोषित की है, सबसे विनाशकारी स्तर, जिसमें बच्चे रोजाना भूख से मर रहे हैं। अस्पताल खंडहर में हैं, 90% घर नष्ट हो चुके हैं और अक्टूबर 2023 से 60,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। यह समानुपातिकता नहीं है, यह विनाश है। जिनेवा कन्वेंशनों के सामूहिक दंड, नागरिकों को निशाना बनाने और भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का सीधा उल्लंघन। कथानक में असमानता, कहानी पर नियंत्रण। हत्याएं सत्य के खिलाफ युद्ध के साथ परिलक्षित होती हैं। इजराइल की सैन्य खुफिया इकाई 8200, पश्चिमी लॉबिंग समूह जैसे आईपैक, एडीएल, एजेसी और यूएन वॉच और बीबीसी के लंबे समय तक मध्य पूर्व के संपादकों जैसे मीडिया गेटकीपर्स ने दशकों तक कथानक को आकार दिया है। गाजा में पत्रकार केवल आकस्मिक क्षति नहीं है, वे व्यवस्थित रूप से निशाना बनाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 से कम 242 लोग मारे गए हैं, जो दर्ज इतिहास में पत्रकारों की मृत्यु दर में सबसे अधिक है। विदेशी प्रेस को गाजा में प्रवेश करने से बड़े पैमाने पर रोक दिया गया है। इजराइल उस लेंस को नियंत्रित करता है जिसके माध्यम से बाहरी दुनिया विनाश को देखती है। फलस्तीनी स्रोतों से आए आंकड़ों को हमास प्रचार के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जबकि इजरायली सैन्य बयानों को तथ्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, जिससे एक झूठा संतुलन बनता है जो नरसंहार के पैमाने और इरादे को मिटा देता है। 26 जुलाई 2025 को हंडाला घटना प्रतीकात्मक है। एक नॉर्वेजियन ध्वज वाला मानवीय सहायता जहाज, जो डॉक्टरों, सांसदों, पत्रकारों और भूखे बच्चों के लिए शिशु फॉर्मूला ले जा रहा था, को अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में इजरायली बलों द्वारा अपहरित कर लिया गया। अनक्लोज के अनुच्छेद 101 के तहत एक स्पष्ट राज्य समुद्री डकैती। सहायता को जब्त कर लिया गया, यात्रियों को हिरासत में लिया गया और भुखमरी जारी रही। यह सुरक्षा के बारे में नहीं था, यह गवाहों को चुप कराने और घेराबंदी को अटूट रखने के बारे में था। संस्थानों में असमानता, दंडमुक्ति का ढाल। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था, जो ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है, को कमजोर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल की निंदा करने वाले लगभग हर प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए, जिससे यह निकाय पंगु हो जाता है और इजराइल को प्रतिबंधों या प्रवर्तन से बचाया जाता है। यह संस्थागत संरक्षण खुले राजनीतिक कब्जे द्वारा मजबूत होता है। 6 नवंबर 2024 को आईपैक ने सोशल मीडिया पर डींग मारी कि उसके द्वारा समर्थित 190 उम्मीदवारों ने अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव जीते। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों अमेरिका इजराइल संबंधों के लिए द्विदलीय समर्थन को मजबूत करने के लिए। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है जिसे लॉबी स्वयं उत्सव के रूप में मनाती है। परिणाम एक ऐसा कांग्रेस है जो नियमित रूप से अरबों की सैन्य सहायता को मंजूरी देता है, आईसीजे के फैसलों को नजरअंदाज करता है और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बुनियादी शर्तों को लागू करने से इनकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने अस्थायी उपाय जारी किए हैं। इजराइल को गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने का आदेश देते हैं। इजराइल ने बिना किसी परिणाम के इनका उल्लंघन किया है। आईसीसी के अभियोजक करीम खान को बदनामी अभियान का सामना करना पड़ा और उन्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया गया। उनके डिप्टी ने वर्तमान घेराबंदी के पीछे इजरायली नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग नहीं की है। कई आईसीसी जजों और इजराइल की आलोचना करने वाले संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह सिस्टम की विफलता नहीं है, यह सिस्टम है जो एक राज्य को जवाबदेही से बचाने के लिए झुक गया है। मौखिक इनकार से भौतिक उन्मूलन तक। एक सदी से अधिक समय तक साइनवादी नेताओं ने फलस्तीनियों के अस्तित्व के मौखिक इनकार को मैदान पर भौतिक उन्मूलन के साथ जोड़ा है। नारे बदल गए होंगे, बिना लोगों की भूमि, बिना भूमि के लोगों के लिए से लेकर इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला। प्रत्येक युद्ध, नरसंहार और विस्थापन एक और टुकड़ा जमीन लेने का फलस्तीनियों के बिना फलस्तीन की ओर एक और कदम रहा है। 1924 में जैकब इसराइल डीहान की हत्या साइनवाद का विरोध करने के लिए, 1948 में देर यासिन नरसंहार, 1982 में साबरा और शतीला नरसंहार, 2001 में गाजा हवाई अड्डे का विनाश और 21वीं सदी में गाजा पर बार बार बड़े पैमाने पर हमलों तक इसराइल ने दिखाया है कि वह अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए किसी भी और सभी साधनों, आतंकवाद, जातीय सफाई, घेराबंदी युद्ध का उपयोग करेगा। निष्कर्ष: गाजा में अंतिम खेल। आज गाजा में जो हो रहा है वह इजराइल के इतिहास से विचलन नहीं है, यह इसका तार्किक निष्कर्ष है। उन्मूलनवादी एजेंडा जो 1897 में बासिल में शुरू हुआ, दशकों की अमानवीय बयानबाजी और व्यवस्थित हिंसा के माध्यम से कायम रहा, अब अपने सबसे बेशर्म चरण में पहुंच गया है। गाजा युद्ध का मैदान नहीं है, यह एक परीक्षण है कि क्या कोई राज्य पूरी दुनिया के सामने नरसंहार कर सकता है और वास्तविक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए नहीं कि सबूतों की कमी है, बल्कि इसलिए कि उसने कथानकों पर कब्जा कर लिया है, संस्थानों को पंगु कर दिया है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली विधायिका की वफादारी हासिल कर ली है। यदि दुनिया इसे जारी रहने देती है तो संदेश स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वैकल्पिक है, मानवाधिकार पर बातचीत की जा सकती है और नरसंहार को आत्मरक्षा के रूप में पुनः ब्रांड किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास सही जगहों पर सही दोस्त हों।